ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य तथा औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के बीच आज हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश है। श्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भागीदारी का निमंत्रण दिया। ये प्रदर्शनी इस महीने ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच साझेदारी में उत्साहवर्धक सहयोग के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इससे पहले ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री कल लैंड सिटी सिंगापुर पहुंचे। प्रधानमंत्री सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है और इस गति से देश को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देशभर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि आज का दिन युवाओं के विचारों को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वे हमेशा महिलाओं की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें। राष्ट्रपति ने शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए शिक्षकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा और ममता मोहंता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेन्द्र कुशवाहा तथा एनसीपी नेता नितिन लक्ष्मण राव जाधव को शपथ दिलाई गई। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चेन्नई में राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुश्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी के राजस्व बंटवारे ने संघीय व्यवस्था को भावना को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को कर व्यवस्था के बारे में भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह के बारे में सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में जीएसटी भुगतान करने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,00,000 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक एफआईबीएससी 2024 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दास ने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडरों से रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति जैसी घटनाओं का विश्लेषण करने तथा किसी भी अप्रत्याशित चुनौती के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन बैठक की अध्यक्षता की। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत में महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन ने 12.33 सेकंड का समय लेकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।